नक्श आयशा के साथ डांस फ्लोर पर आया था और उसे सबके सामने प्रपोज करने जा रहा था। बातों ही बातों में उसने ये भी कहा कि उसी की वजह से राघव और उसके बीच में दोस्ती हुई और वो इतनी प्रोग्रेस कर रहा है। लोगों को अब नक्श की प्रमोशन का कारण समझ आ गया था और वो आपस में बातें करने लगे थे। वहीं अभिमन्यु इशिका के साथ जरूर था, लेकिन उसकी नज़र नक्श की हरकतों पर भी थी। एक आदमी बोला, अब समझ आ रहा है मिस्टर नक्श सिंघानिया और राघव मित्तल के बीच इतनी क्यों बन रही है। इसका कारण तो मिस सिंघानिया है, लेकिन इसमें गलती क्या है? दूसरे आदमी ने कहा, जरूरी नहीं पास्ट में रिश्ते खराब हों तो उन्हें फ्यूचर में भी सही ना किया जाए। मिस सिंघानिया अगर इसकी कड़ी बन रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मैंने सुना है कि उसकी मॉम दिल्ली से है। हाँ, मिस सिंघानिया बिल्कुल सही कर रही है। अगर मित्तल फैमिली से रिश्ते जुड़ गए हैं तो क्या पता फिर से चौहान फैमिली के साथ भी उनके रिश्ते बन जाएं, तीसरे आदमी ने जवाब दिया। उन सबकी बातें आयशा के कानों में पड़ी तो वो मन ही मन काफ़ी खुश हो रही थी। सिंघानिया फैमिली अमीर ज़रूर थी, लेकिन राजवंश फैमिली के मुकाबले कुछ नहीं थी। ऐसे में नक्श से शादी करके वो अमीर और पावरफुल हो सकती थी। आयशा ने मुस्कुराकर नक्श से कहा, एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है और मुझे तुम्हारा वही लेडी लक बनना है नक्श। ऑफकोर्स स्वीट हार्ट, यू आर माई लेडी लक, नक्श ने जवाब दिया और फिर अपने ब्लेजर से एक रिंग का बॉक्स निकाला। नक्श ने बॉक्स के अंदर से रिंग निकाल आयशा को दिखाई। वो एक रियल डायमंड की रिंग थी जो एक रेयर डायमंड था। उस रिंग की कीमत लगभग 1 करोड़ के करीब तो पक्का थी। अंगूठी को देखकर आयशा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। तभी नक्श उसके सामने एक घुटने पर बैठा और बोला, विल यू मैरी मी आयशा। नक्श का प्यार देखकर आयशा की आंखें नम होने लगी तो वहीं भीड़ हाँ कहने के लिए चिल्लाने लगी। आयशा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और फिर अपना हाथ आगे कर दिया था। नक्श ने उसे सबके सामने अंगूठी पहनाई तो सब तालियां बजाने लगे। हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था। दोनों साथ में अच्छे लग रहे थे। इसके बाद आयशा ने नक्श को गले लगाया और फिर वो डांस करने लगे। वहां डांस फ्लोर पर नक्श और आयशा के अलावा अभिमन्यु और इशिका थे। अभिमन्यु इशिका को छोड़ नहीं रहा था तो इशिका ने थोड़ा इरिटेट होकर कहा, अब हमें डांस करना बंद कर देना चाहिए, लोगों को यही लगेगा कि आप नक्श से जल रहे हो। कोई फर्क नहीं पड़ता, अभिमन्यु ने बेपरवाही से आइज रोल करके कहा। रोहन भी वहीं पर खड़ा हुआ था। उसे अब पता चल गया था कि आयशा की वजह से नक्श इतना आगे बढ़ रहा था। उसने उन दोनों से इरिटेट होकर कहा, ये लड़का सच में मौके का फायदा उठाने में माहिर है। पार्टी डील मिलने की खुशी में हो रही थी और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर दिया। लोगों को यही लग रहा होगा कि ये डील आयशा सिंघानिया की वजह से हुई है, जबकि असली मेहनत अभिमन्यु की थी। अभिमन्यु को किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ना ही नक्श के प्रपोज करने से और ना ही सारी लाइमलाइट आयशा के पास जाने की वजह से। वो डांस कर रहा था तभी उसके पास किसी का कॉल आया। मुझे कॉल रिसीव करने के लिए जाना पड़ेगा, अभिमन्यु ने इशिका से कहा। इशिका अभिमन्यु से थोड़ा दूर हुई और हाँ में सिर हिला दिया। अभिमन्यु कॉल पर बात करने के लिए वहां से शांत जगह पर चला गया था। अभिमन्यु के जाते ही रोहन इशिका के पास जाकर बोला, तुम्हें मेरे कजिन का बर्ताव अजीब नहीं लगा? और वो कैसे? इशिका ने हैरानी से पूछा। रोहन ने सिर हिलाकर कहा, वो तुम्हें बताकर गया है कि उसे कॉल रिसीव करना पड़ेगा। उसे कब से अपने हर एक मोमेंट की इन्फॉर्मेशन दूसरों को देने की जरूरत पड़ने लगी? इशिका ने इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने अपना मोबाइल चेक किया तो कियारा का मैसेज आया हुआ था। कियारा ने लिखा था, मिस सिंघानिया, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए बाथरूम में गई थी लेकिन तुम वहां नहीं थी। मुझे तुमसे मिलना है, मैं इसी पार्टी में हूँ। मुझे बताओ तुम कहाँ हो? मैं पार्टी हॉल के साउथ साइड में हूँ, इशिका ने जवाब में लिखा। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ, कियारा ने जल्दी से जवाब दिया। कियारा ने अपना फोन वापस बंद किया तो उसने देखा नक्श और आयशा डांस खत्म करने के बाद डांस फ्लोर से नीचे आ रहे थे। सब उन्हें बधाइयां दे रहे थे, कोई नक्श के प्रमोशन के लिए तो कोई उनकी अभी अभी हुई इंगेजमेंट के लिए। इशिका ने उन्हें देखकर गहरी सांस ली। इतने में उसके पास से ओजस चलकर आया जो नक्श का चमचा था। इशिका उसे इग्नोर करना चाहती थी, फिर भी ओजस उसके पास में आकर बोला, मैं जानता हूँ तुम ही डॉक्टर मर्चेंट हो, लेकिन तुम बस एक रिसर्चर हो। नक्श राजवंश के मंगेतर मित्तल फैमिली को जानती है और उन्हीं की वजह से ये डील हो रही है। पता है इस पार्टी में किसकी पोजिशन कितनी हाई है? ये उस पर डिपेंड करता है कि वो इस पार्टी में कितने लोगों को जानता है। मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर किसी को जानती होगी। इशिका को समझ नहीं आया कि वो ओजस को क्या जवाब दे, इसलिए उसने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। वो दूसरी तरफ जाने लगी, तभी उसकी नज़र सामने की तरफ पड़ी। इशिका ने देखा नैना कियारा को लेकर आ रही थी, लेकिन तभी गौतम मित्तल और राघव ने उन्हें रोक लिया था। उनके बीच बहस जैसा कुछ हो रहा था जिसमें कियारा थोड़ी इमोशनल नजर आ रही थी। इशिका उनसे बात करने के लिए बढ़ी रही थी कि तभी आयशा उसके पास जाकर उसका रास्ता काटते हुए बोली, मिस्टर राघव मित्तल से मिलने जा रही हो तुम? आयशा ने दूर से इशिका को देख लिया था कि वो राघव मित्तल की तरफ बढ़ रही थी। अगर इशिका राघव से बात करती तो आयशा का सच सामने आ जाता और वो ऐसा कभी नहीं चाहती थी। आयशा वहां इसी प्लानिंग के साथ आई थी कि आज वो किसी भी कीमत पर राघव और इशिका को बात नहीं करने देगी। वैसे भी कल राघव यहां से जा रहा था तो मामला फिर कभी उसके सामने नहीं आता। थोड़ी देर पहले ही नक्श और आयशा ने प्लानिंग करके उसे पार्टी से निकलवाने तक का कह दिया था। बस तब तक आयशा को ये ध्यान रखना था कि किसी भी तरह से इशिका और राघव की बात ना हो। मेरे रास्ते से साइड हटो, आयशा की इस हरकत पर इशिका हल्के गुस्से में बोली। आयशा के पीछे पीछे नक्श भी आ गया था। उसने पहली बार इशिका को इस तरह तैयार हुए देखा था। वो चाहकर भी अपनी नजरें इशिका से हटा नहीं पा रहा था। आयशा ने इशिका को घूर कर देखा और फिर नक्श से बोली, याद है नक्श, मिस्टर मित्तल ने क्या कहा था इसे यहाँ से? आयशा ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी क्योंकि उसने देखा कि नक्श को उसकी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो बस एकटक इशिका को घूरे जा रहा था। वो बस इशिका की खूबसूरती देखकर मदहोश सा हो गया। आयशा ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींची और इशिका से कहा, तुम यहाँ पार्टी में क्या कर रही हो? मुझे नहीं लगता कि मिस्टर मित्तल तुम्हें यहाँ देखना चाहते होंगे। और मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि तुम कब से मिस्टर मित्तल के लिए डिसीजन लेने लग गई। आखिर हो कौन तुम? इशिका ने सख्ती से जवाब दिया। इशिका की बातों से आयशा को बहुत इंसल्ट फील हुआ। वो कुछ भी कहकर या करके इतने लोगों के बीच अपनी इमेज नहीं बिगाड़ सकती थी। वैसे भी मालविका ने उसे यही समझाया था कि वो अपनी मासूम इमेज को बरकरार रखे। उन दोनों की बहस सुनकर नक्श का ध्यान टूट गया। वो तुरंत होश में आया और इशिका से सख्ती से बोला, इशिका, तुम आयशा से ऐसे बात नहीं कर सकती हो। और तुमने ये क्यों पूछा कि वो कौन है? वो मेरी होने वाली पत्नी है। उन दोनों की बहस काफी तेज हो गई थी तो आसपास के लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला गया। उनमें से कोई इशिका को नहीं जानता था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हुए डांस और प्रपोज के बाद सब आयशा को जानने लगे थे। सब इशिका को भला बुरा कहने लगे क्योंकि नक्श से सगाई करने के बाद आयशा एक तरह से वहां की होस्ट थी।
उनमें से एक आदमी ने इशिका को पहचानते हुए कहा, मैंने थोड़ी देर पहले इसे मिस्टर राजवंश के साथ देखा था। क्या ये मिस्टर राजवंश के साथ आई है? ये उनके साथ खड़ी तो हो सकती है, लेकिन मिसेज राजवंश तो नहीं है ना? ये जो भी है, इसकी हैसियत कभी भी आयशा सिंघानिया जितनी ऊंची नहीं हो सकती, उसके पास खड़ी औरत ने जवाब दिया। इशिका को उनकी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था, पर हमेशा की तरह उसे लोगों के सवालों के जवाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो वहां से जाने लगी तभी आयशा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, इशिका, यहाँ सेलिब्रेशन हो रहा है। तुम्हारे और मिस्टर राघव मित्तल के बीच के रिलेशन अच्छे नहीं हैं। मैं नहीं चाहती कि उनका मूड खराब हो। उनसे बात करके उन्हें परेशान मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से ये डील खराब हो जाए। इशिका ने गुस्से में आयशा का हाथ झटका और तेज आवाज में कहा, अपने काम से मतलब रखो तो ज्यादा सही रहेगा। हालांकि इशिका ने आयशा का हाथ ज्यादा जोर से नहीं झटका था, फिर भी आयशा कुछ कदम लड़खड़ाकर पीछे की तरफ झुक गई, मानो इशिका ने उसे कितनी जोर से धक्का दिया हो। आयशा को इस तरह लड़खड़ाते देखकर नक्श ने उसे तुरंत पकड़ लिया। वो गुस्से में इशिका पर चिल्लाकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आयशा को धक्का देने की? अभी ये गिर जाती तो अभी के अभी तुम इससे माफी मांगोगी। आयशा की इंसल्ट को नक्श खुद पर ले रहा था क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले ही सबके सामने उसे प्रपोज किया था। मैं उसे सॉरी नहीं बोलूंगी क्योंकि मैंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, इशिका ने सख्ती से जवाब दिया। नक्श यहीं पर नहीं रुकने वाला था। वो बोला, मैंने खुद देखा है कि तुमने इसे धक्का दिया है। तुम मेरी दादी और चाचू की फेवरेट हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो चाहे वो कर सकती हो। यहाँ तुम्हारी मनमानी नहीं चलने वाली है। चुपचाप इशिका से माफी मांगो और निकलो यहां से। जानती हो ना मिस्टर मित्तल तुमसे नफरत करते हैं? नक्श की बात सुनकर ओजस ने आग में घी डालते हुए पूछा, मिस्टर राजवंश, मिस्टर मित्तल इशिका सिंघानिया को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है? इशिका भी इस बात को जानना चाहती थी कि आखिर राघव को उससे प्रॉब्लम क्या है, इसलिए उसने बीच में दखल नहीं दिया। नक्श उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, हाँ, क्योंकि कुछ दिनों पहले हॉस्पिटल में आयशा ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही नक्श का हाथ पकड़ लिया था। सबकी तरह नक्श भी गलतफहमी में था। आयशा ने नम आंखों से नक्श से कहा, जानती हूँ कि गुस्से में इशिका से गलती हो गई है, पर वो जैसी भी है मेरी बहन है। प्लीज सबके सामने इस तरह बात कर उसकी इंसल्ट मत करो। इसमें सिर्फ इशिका नहीं, वो भी जुड़ी हुई है, उसकी भी इंसल्ट होगी। आयशा ने जानबूझकर कियारा का नाम नहीं लिया, लेकिन नक्श समझ गया था कियारा के लिए वो शांत हो गया था। आयशा नहीं चाहती थी बात बढ़े क्योंकि बात बढ़ते तो जरूर वहां मिस्टर मित्तल आ जाते। आयशा ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए कहा, इसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा। हाँ, इसने मुझे जोर से धक्का दिया था, पर गलती से हुआ होगा। मुझे इससे कोई सॉरी नहीं चाहिए। तुम प्लीज बोलो कि ये पार्टी से चली जाए। आयशा, तुम इतनी अच्छी कैसे हो सकती हो? नक्श ने सिर हिलाकर कहा। नक्श ने इशिका की तरफ देखा और फिर सख्ती से बोला, आयशा इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। शुक्र मनाओ वरना मैं तुम्हें जाने नहीं देता। अब चुपचाप यहां से चली जाओ, वरना मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। इशिका प्लीज चली जाओ, मिस्टर मित्तल ने कहा था कि वो तुम्हें इस पार्टी में देखना नहीं चाहते हैं। इस डील के लिए यहां से चली जाओ, आयशा ने इशिका की तरफ देखकर रिक्वेस्टिंग वे में बोलने का दिखावा किया। वहां खड़े लोग आपस में बातें बनाते हुए इशिका को दोष देने लगे। वो उसे वहां से निकल जाने के लिए कह रहे थे। उनके हिसाब से इशिका को वहां किसी ने इन्वाइट नहीं किया था, वो एक एम्प्लॉय होने की वजह से उस पार्टी को अटेंड कर रही थी। रोहन कुछ देर के लिए दूसरी तरफ गया था, जब उसने लोगों की बातें सुनी तो वो भीड़ में आकर तेज आवाज में बोला, इशिका, आई मीन मिस सिंघानिया को यहां पर मिस्टर राजवंश ने बुलाया है, ये उनकी गेस्ट है। अब मैं देखता हूं कि इसे यहां से निकालने की हिम्मत कौन करता है। अभिमन्यु का नाम लेते ही अचानक भीड़ चुप हो गई, लेकिन तभी नक्श आगे आकर बोला, मैं रखता हूं इसे यहां से निकलने की हिम्मत, सिर्फ हिम्मत ही नहीं रखता, इसे यहां से निकाल कर रहूंगा, चाहे इसके लिए चाचू मुझसे नाराज ही क्यों ना हो जाए। इसकी वजह से मैं राजवंश एम्पायर और मित्तल एम्पायर के बीच होने वाली डील को अफेक्ट नहीं होने दूंगा। हर कोई फिर से नक्श की तारीफ करने लगा, वो कंपनी के फायदे की सोच रहा था। ये देखकर सपना ने नक्श को एक समझदार इंसान बताया। वो इशिका की बुराई कर रहे थे, उन सबके हिसाब से कंपनी का फायदा ज्यादा जरूरी था, ना कि एक गेस्ट। वहीं दूसरी तरफ कियारा परेशान थी, क्योंकि राघव ने उसे मिस सिंघानिया से मिलने के लिए मना कर दिया था। उसके मना करने के बावजूद वो नैना को लेकर साउथ साइड में आ गई थी, लेकिन साउथ साइड में भीड़ को इकट्ठा देखकर कियारा वहीं पर रुक गई थी। अचानक उसने नैना से पूछा, वो लोग वहां पर इकट्ठा हैं, क्या वो पार्टी का साउथ साइड है मॉम? हाँ बेटा, नैना ने जवाब दिया, मिस सिंघानिया ने मुझे बताया था कि वो साउथ साइड में है। यहां पर इतने लोग इकट्ठा क्यों हो रहे हैं? कहीं मिस सिंघानिया के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा ना? मुझे वहां जाना होगा मॉम, कियारा ने जिद करते हुए कहा। हालांकि राघव ने कियारा को उस तरफ जाने से मना किया था, लेकिन कियारा ने उसकी तरफ प्लीडिंग आइज से देखा तो राघव ने हां में सिर हिलाकर कहा, अच्छा ठीक है, चलते हैं। राघव के हां करते ही वो सभी उस दिशा में जाने लगे जहां नक्श ने आयशा के साथ मिलकर इशिका का तमाशा लगा रखा था।